आज बात करेंगे गोवा की आन बान और शान रेमो फर्नांडिस के बारे में, जिनकी निजी कहानी भी बहुत ही रोमांचक है। और बात करने के लिए स्टूडियो में खास आमंत्रित किया है मैंने मोहित पंडित को। मोहित, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार अमित जी, बहुत 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 शुक्रिया।
ओ मारिया पिताशे, 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 ओ मारिया पिताशे।
रेमो लाइफ की बात कर रहे हैं तो मोहित जानना चाहेंगे कि इनका खुद का जीवन काफी रोमांचक है, तो क्या कहानी है रेमो की और 1990 के दशक के इंडी पॉप?
रेमो का जो म्यूजिक था वो 90s में तो फेमस हुआ, लेकिन इनकी जो जर्नी थी वो मिड 80s में ही शुरू हो गई थी। बहुत ही बड़ा कारण कि ये बहुत ही लंबे समय तक बॉलीवुड से दूर रहे, वो उसका कारण ये था क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, ये एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे जो लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, खुद ही गाते थे, खुद ही इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। दो इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी थी इनकी, फ्लूट और गिटार
जी।
और जॉनर जो था इनका वो बहुत ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, तो क्योंकि सारे गाने इंग्लिश में लिखते थे तो कोई भी बॉलीवुड का डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर कोई भी इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड जो है उनसे इनकी बनती नहीं थी और ये रिजेक्ट हो जाते थे सब
जगह।
तो ये काफी समय तक जो है गोवा में ही बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रहे। दो नाम उस समय के बहुत बड़े थे, एक रेमो और दूसरे थे आंद्रे कोहेलो। आंद्रे कोहेलो को मैंने अभी 4 साल पहले प्रोड्यूस भी किया है। ये लोग इसलिए नहीं आगे आ पाए क्योंकि इनका सारा म्यूजिक ही इंग्लिश में था और उस टाइम इंग्लिश म्यूजिक की कोई जगह थी ही नहीं बॉलीवुड में। जैसे कि देखा कि 90s में भी इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पनपने में बहुत समय लगा
जी।
बहुत लोगों ने अपनी रेसिपीज बनाई, तो इनके पास ऐसे ऐसा कोई रेसिपी थी नहीं जिस रेसिपी को लेकर आगे आते, क्योंकि हिंदी का गाना था नहीं
जी।
करीब आई थिंक सन 85 में गोवा के अंदर इन्होंने ऑफिशियली उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी के लिए इन्होंने परफॉर्मेंस किया और उस टाइम पे इनका पहला फेम जो हुआ वो उस टाइम इनको पहली बार लोगों ने जाना कि रेमो भी कोई जो है सिंगर हैं, कोई म्यूजिशियन हैं गोवा से।
और वो गीत था
अच्छा, ये पहली बार था जब किसी हिंदुस्तानी गाने में लोगों ने जमैकन फ्लेवर देखा, एक अफ्रीकन टेक्सचर देखा इनके गाने में। इनके म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा स्पैनिश, पोर्चुगीज और अफ्रीकन मिक्स था, लेकिन ये कमर्शियल स्केल पे पहली बार जब ये देखो देखो जलवा आया तो ये बहुत ही हिट गाना हुआ
जी।
इसके बाद ऑलमोस्ट 5 या 6 साल तक ये इंडस्ट्री से गायब हो गए, कोई नहीं जानता था
कहाँ
है, बिल्कुल साफ कोई नहीं जानता था कहाँ है। एक्चुअली ये टूर कर रहे थे यूरोप में और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इनकी फॉलोइंग शायद आज भी इंडिया में इतनी बड़ी ना हो जितनी बड़ी फॉलोइंग इनकी यूरोप में है
जी।
तो गोवा, जैसे कि हम जानते हैं गोवा में सारी दुनिया के हिप्पी नजर आते हैं, ये एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो यूरोप में इंडियन हिप्पी के नाम से जाने जाते थे।
इस गाने में जो हम फ्लूट और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुन रहे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है बिल्कुल इन्होंने ही तैयार किया था ये पूरा गाना, लिखने से लेके म्यूजिक कंपोजिशन
बिल्कुल स्क्रैच से लेकर। मल्टी रिकॉर्डर नाम से एक यूनिट आती थी उस टाइम, इंडिया में शायद 3 या 4 लोगों के पास रही होगी, तो गोवा में सिर्फ इन्हीं के पास थी और इन्होंने सारा गाना प्रोड्यूस किया। क्योंकि आपने फ्लूट मेंशन करी तो मैं फ्लूट के बारे में बता दूं कि इनकी जो स्टाइल था फ्लूट प्लेइंग का
जी
वो राग बेस्ड नहीं था, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल राग वगैरह नहीं सीखे, लेकिन वो फिर भी उसके टेक्सचर काफी मिलते थे जो आज तक इंडियन म्यूजिक में फॉलो किया जाता है
जी। अब आते हैं इंडी पॉप के दशक में 1990 में, जब रेमो फिर एक बार वापस आए धूम मचाने के लिए अपनी एक खास गीत के साथ। अब वो गीत था इनकी एल्बम ओ मेरी मुन्नी से।
अब ओ मेरी मुन्नी एक ऐसा गाना हुआ इनके इनके करियर में, ये एक्चुअली एक पहला गाना था जो इनको प्लैटिनम रिकॉर्ड लेबल तक मिला. उसके बाद ये ऑल्सो एक ऐसा गाना था जो इनका इंडिपेंडेंट करियर जो था वो सेट होने लगा, क्योंकि एक हिंदी एल्बम थी, पहली बार इन्होंने एक हिंदी एल्बम की थी. इससे पहले ही एक्चुअली ये बॉलीवुड में एंटर कर चुके थे
जी.
AR रहमान साहब ने इनको
वो उस पर भी हम आगे आएंगे बात करते हुए. अगर आपको भी ये गीत याद है तो 04299996263 पे बताइए कि कितना प्यार करते हैं रेमो से आप. जी, अब आप बात कर रहे थे उस गाने की जिसे हर बच्चा 1990 के दशक में गुनगुना रहा था, पर AR रहमान के नाम पर.
जी, ये शुरू से रहा है AR रहमान साहब के म्यूजिक में कि उनको क्रेडिट तो बिल्कुल मिलता ही है, लेकिन AR रहमान एक ऐसे कंपोजर भी हैं जिन्होंने बहुत सारे नए टैलेंट को रास्ता दिया, और रेमो भी एक ऐसे सिंगर थे. गाने का नाम था हम्बा हम्बा. बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि गाना एक्चुअली रेमो ने गाया. और इस गाने की एक खास बात है कि कंपोजिंग के बाद करीब 50 से ऊपर सिंगर साउंड टेस्ट में इस गाने के लिए फेल हुए. इस गाने का टेक्सचर क्योंकि जैज बेस था, तो इसीलिए रेमो की आवाज इतनी सूटेबल आई.
रेमो जो है वो स्टेज परफॉर्मर या इंडी पॉप के सर्कल्स में ज्यादा जाने जाते हैं, बॉलीवुड गीतों के लिए नहीं जाने जाते, कहीं अवॉइड करते रहे बॉलीवुड को वो.
रेमो का म्यूजिक एक बहुत ही सोशो इकोनॉमिक टेक्सचर पे बेस्ड था, जो सोसाइटी के बारे में बात करना
जी.
स्पेशली 90s के टाइम में जहाँ पे सारी चीजें बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी. आज तो हम फिर भी बहुत सारी बातों पे खुल के बातें करने लगे हैं, तो इसीलिए उनका रुझान बॉलीवुड की तरफ कभी ऐसा था नहीं, क्योंकि बॉलीवुड में मुश्किल से 4 या 5 गाने ही टोटल उनके
जी, हैं. लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप उन्हें भुला नहीं पाएंगे. मतलब जो गोवा की आन बान शान रहे हैं रेमो, उनकी चाहे हिंदी बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अलग गायकी हो, लेकिन उनसे प्यार तो होना ही था भारत की जनता को.
बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही मेंशन किया. जतिन नरे साहब ने इनको एक चांस दिया प्यार तो होना ही था का टाइटल ट्रैक, जो इन्होंने बहुत बड़ी सिंगर जसविंदर नरोला के साथ गाया
जी,
और बहुत खूबसूरती से निभाया. सही हिंदी ना होने के बावजूद उसके अंदर एक अलग ही खूबसूरती है
जी.
जो निकल के आई, और वो एक्चुअली इनके करियर का सबसे बड़ा गाना साबित हुआ
जी.